ओम शांति। पहलवानी चल रही थी 25 इक्यानवे की 2 पेज का आज अभी तुम्हारी बुद्धि में ये ड्रामा का राग आ गया है। अगर कोई नया आ जाता है तो शुरू से लेकर के समझाना पड़ता है। ये बड़ी लंबी कहानी है बहुत ऊंची, मगर तुम्हारे लिए तो कॉमन है। तुम जानते हो ये सीढ़ी का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफ है, ये भी ड्रामा विनोद है। ये दुख सुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो नीच भी बनते हो। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य शक्ति का बीज रूप हूँ, झाड़ का सारा नाली तो जरूर मेरे पास ही होगा। बड़ के झाड़ का निशान नीचे ऊपर ही है। सन्यासी लोग भी निशान देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में तो कुछ भी नहीं, न बीज उनकी बुद्धि में है और न चैतन्य झाड़ उनकी बुद्धि में है। न उनकी बुद्धि में ये है कि मैं इस झाड़ का कौन सा पत्ता हूँ, किस टहनी का किस थने का पत्ता हूँ। तुम तो जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। अभी वो फाउंडेशन नहीं है जो पहले था, बाकी तो सारा घर खड़ा हुआ है। सारे ही धर्म है, बाकी एक धर्म नहीं है। तो बड़ का झाड़ देखो कैसा खड़ा हुआ है, छोर है नहीं देवी देवता सनातन धर्म का, फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा खड़ा हुआ है। दूसरे झाड़ तो फाउंडेशन बिगड़ सूख जाते हैं, क्योंकि फिर बिगड़ उनको पानी कैसे मिलेगा। परंतु ये बड़ का झाड़ सारा ही तरोताजा खड़ा हुआ है, ये तो वंडर है। ऐसे इस झाड़ में भी देवी देवता धर्म तो है नहीं, अपने को तो समझते ही नहीं है देवी देवता। देवता धर्म के बदली हिंदू कह दिया, देवता अपन को भूल गए, कह दिया हिंदू। क्यों हिंदू नाम क्यों पड़ा, समझते हम हिंसा को दूर करने वाले। हिंग मन हिंसा, दू मान दुई के अर्थात दूर करने वाले। बाहर की दुनिया की बात है, वो भी हिंदू समझते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं जो अपनों को हिंदू समझता हो। किसी से भी पूछो तो क्या कहेंगे, कौन से धर्म के हैं हम, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं या ब्राह्मण धर्म के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो देवता धर्म के होंगे उनमें तो सहनशीलता होगी, वो अपने को समझते हैं हम हिंसा को दूर करने वाले, बाकी का हिंसा को बढ़ाने वाले। हिंसा कौन सी, सन्यासी लोग समझते हैं گو کو تو ہنسا ہے, وہ تو ہڈ کی گووں کو سمجھ لیتے ہیں, ہڈ کے سنیاسی. لیکن براہمنوں کی دنیا میں جو دیہد کے سنیاسی ہیں, گھر گھاٹ چھوڑ کر کے آشرم جمع کے بیٹھنے والے, وہ اپنوں کو کون سی ہنسا کو دور کرنے والے سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چیتن گو ہیں ان کو ہنسا سے دور کرنے والے, ان کی ہنسا ہم نہیں ہونے دیں گے, ان کی شادیاں ہم نہیں ہونے دیں گے. تو اپن کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہنسا کو دور کرنے والے ہیں, لیکن ہے واسطو میں ہنسا کو بڑھانے والے. کیوں؟ کیونکہ کوش گھر کھولنا ایک پرکار سے نہیں ہوتا, سوکھ میں بھی ہوتا ہے تو سل میں بھی ہوتا ہے. سب سے زیادہ سوکھ میں ہوتی ہے یا سل میں ہوتی ہے؟ سوکھ میں زیادہ شکتی ہوتی ہے, سوکھ شکتی زیادہ وناشکاری ہوتی ہے, زیادہ ہنسا کرنے والی ہوتی ہے. تو شادی کرنے سے تو بچا دیا, لیکن درشتی وشتی کا جو کرپشن بڑھ رہا ہے یوگ کے نام پر, اس سے بھی کیا بچایا؟ اس سے نہیں بچا سکتے, وہ تو اور ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ مرلیوں میں تو بابا نے کہیں نہیں کہا کہ کنیا ماتائیں بیٹھ کر کے جات جاتی کے پرشوں کو درشتی کا دان دیں, یہ یوگ ہے. بابا تو کہتے ہیں یہ آنکھیں بہت دھوکا دینے والی ہیں, ان آنکھوں کو قبضے میں رکھنا ہے. انہوں نے الٹا ہی یوگ لگانا شروع کروائی دیا. جہاں درشتی جائے گی وہاں درشتی ضرور جائے گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ درشتی جائے اور درشتی نہ جائے, سنکلپ نہ جائے. تو درشتی جائے گی, درشتی دوشت ہوگی, بے وچاری بنے گی, جیسے اور کرم اندریاں بے وچاری بنتی ہیں. تو کرم اندریوں سے بے وچار کرنے والوں کو ویشیہ اور ویشیہ کہا جاتا ہے. ویسے آنکھ بھی بے وچاری بنتی ہے. ان آنکھوں سے کسے دیکھنا ہے؟ ایک باپ کو دیکھنا ہے. ہم اپنے باپ کو بیٹھ دیکھیں. راون نے سیتا سے کہا تو کیا کہا؟ ایک بار میری اور دیکھ لے. اور سیتا نے ایک بار بھی اس کی اور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. یہ بھارت کی پرمپرا ہے کہ جس بھارت میں سیتا ساوتریاں آنکھ اٹھا کے بھی پر پرش کی اور نہیں دیکھتی تھی, اسی بھارت میں ہندو دھرم کے نام پر, مکھ سے نہیں کہتے ہیں کہ ہم ہندو دھرم کے ہیں, لیکن اندر اپن کو سمجھتے ہیں کہ ہم گو پوش کی ہنسا سے بچانے والے ہندو ہیں, ہم گو پوش کی ہنسا سے بچانے والے ہم ہیں, گو رکشا آندولن کرنے والے. لیکن وہ واسطو میں جانور گوؤں کی کیا رکشا ہوگی جن میں جانوریت بھری ہوئی ہے؟ ارے بھارت کی کنیا ماتائیں تو دستی سے ہی ان کے اندر کیسی شالینتا بھری ہوئی ہوتی ہے. اس دستی سے جو شالینتا بھری ہوئی ہے وہی واسطو میں بھارتی کنیا یا بھارتی ماتا ہے. وہ ایسا کاری کیسے کر سکتی جو شریمت کے برخلاف ہے؟ تو اپن کو ہندو کہہ دیتے ہیں, باہری دنیا میں تو مکھ سے کہہ دیتے ہیں, اور براہمنوں کی دنیا میں مکھ سے نہیں کہتے ہیں, لیکن लेकिन अंदर संकल्पों में ऐसा कहते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले। अब देवी देवता धर्म तो है नहीं, तो हिंदू अपन को कह दिया है जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो देवी देवता कहलाने लायक ही नहीं रहे, क्योंकि रावण तो है ही रुलाने वाला, विचार फैलाने वाला, इंद्रियों का विचार फैलाता है। तो रावण राज्य है दुनिया में, तो नाम बदल करके हिंदू रख दिया। देवताओं के सिर्फ जड़ चित्र निशानी जाकर के रही है, जिसे समझते हैं स्वर्ग में उन्होंने राज्य था, परंतु वह स्वर्ग कब था ये कोई नहीं जानते। ब्राह्मणों की संयम की दुनिया में स्वर्ग में राज्य कब था, देवी देवताओं का आए नहीं था, कब था आदि में, आदि में कब है, है? सिंध हैदराबाद में था, सिंध हैदराबाद में तो संघर्ष चल रहा था, महावारी महाभारत युद्ध भी छिड़ गया था, विनाश वाला वहां प्रज्वलित हुई थी, कराची में, कराची में धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के हाथ में थी, एक छोटा सा सैंपल बना के दिखाया बाबा ने स्वर्ग पर। तो वो स्वर्ग कब था ये बिचारी नहीं जाती, कौन जो अपन को हिंसा को दूर करने वाले हिंदू कहलाते। सचिव की आय बहुत लंबी चौड़ी कर दी है, कहते कलयुग की इससे दुगनी आय द्वापर की, तिगनी आय त्रेता की, और चार गुनी आय सचिव की। तो लंबी चौड़ी आय क्यों कर दी है, क्या नहीं जानते, वो तो जानते हैं कि चारों लोगों की आय बराबर बराबर होती है। बदलने में टाइम लगता है, सचिव में ही बदलने में टाइम लगता है, सचिव में। हाँ सूचिंग का राज उनकी बुद्धि में नहीं है, कि चार युगों की सूचिंग तो यहाँ लुटी हुई है संगम युग में, उसका हिसाब है, सूचिंग का भी हिसाब है, चार तीन की सूचिंग का टाइम निश्चित है। तो वास्तव में युग तो साढ़े बारह सौ वर्ष के बराबर ही बराबर है, लेकिन सूचिंग पीरियड में टाइम बदल जाता है, पहले तीन की शूटिंग में जरूर ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि साफ सामान मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, उतनी खूब रहेगी इसकी शूटिंग में, क्षत्रियवर्ण की आत्माओं की शूटिंग में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस क्षत्रियों की जनसंख्या बढ़ जाती है सचिव के देवताओं के मुकाबले, लेकिन संदेश देने वालों का मल्टीप्लिकेशन भी होता जाता है। तो वहां है आत्मा परम धाम से नीचे उतरती है, जनसंख्या बढ़ती है, और यहाँ शूटिंग पीरियड में क्या होता है, आत्मा जो है वो कहां से आती है, सब्र दाखिल पड़ी हुई आत्मा ज्ञान की चैतन्य अवस्था को पकड़ती है, उनके ज्ञान का दीपक जग जाता है। तो जैसे इस सृष्टि में आ गई, नहीं तो मुर्दा हो चुकी थी, जैसे परमधाम में भी आत्मा कैसी होती है, निष्क्रिय जड़ होती है, तो सोचना विचारना परम धाम में नहीं होता, हलन चलन नहीं होता, तो ऐसे यहाँ सूक्ष्म होती है। तो उन्होंने सत्य किया है, बहुत लंबी कर दी, जो पास हो गया है वो तो फिर अपने समय पर ही रिपीट होगा। नहीं ठीक है, आप बुरे ही हो सकते हैं, ये सिर्फ स्वर्ग में ही होंगे। कौन से टीचर जो स्वर्ग में थे, ये ज्ञान तुम ही समझते हो क्या? अभी ज्ञान में चलने वालों के जो अपने को तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, उनके द्वारा टीचर तो देखो, आप टीचर से रोज चक्कर लगाने पड़ते हैं। कराची में कोई दवा दारू की जरूरत नहीं, कराची की तो बात छोड़ो, माउंट आबू में भी आने के बाद बाबा ने 15 दिन ऐसी परीक्षा का टाइम निश्चित किया जिसमें जो श्वास के मरीज थे उनको भी शोधा और खा के खिलाया और वो स्वस्थ बने रहे। तो त्रेता युगी शूटिंग में सतो सामान्य अवस्था में भी ऐसी स्टेज बनी गई, तो कराची में कैसी स्टेज होगी? तो सतयुग में स्वर्ग के टीचर्स देखो और आज के टीचर्स देखो, बिना इंजेक्शन टेबलेट और दवाइयों के, और अरे साहब बड़ा सा हाफ टीचर खुला हुआ है। बाबा ने कभी चैरिटेबल सेक्स नहीं बनाए क्या? कैसे करते ऐसे हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल जितने भी खोले जाते हैं उनका सरकार से कुछ न कुछ नियंत्रण जरूर होता है, और जब सरकार से नियंत्रण होगा हॉस्पिटल में तो बच्चादानी सफाई करने के जिंदगी भी खोले जाएंगे और बच्चे की सफाई भी की जाएगी। ये जरूरी है, फैमिली प्लानिंग का दिन। अब कहां बाबा का ब्राह्मणों को दिया हुआ ज्ञान, इस ज्ञान में तो इन बातों की दरकार ही नहीं। किन बातों की? बाबा तो ज्ञान योग से ही फैमिली प्लानिंग कराने आए, इन चीजों की क्या दरकार? बाबा रूहानी हॉस्पिटल खोलने आया है, जिस रूह के सुधरने से जिस्म स्वतः ही सुधर जाएंगे। तो वह सचिव के फीचर्स देखो, जहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं होते, प्राचीन की स्टेज देखो, और आज आज ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाप गुप्त है अथवा गुप्त होकर के पार्ट बजा रहा है, यानी दो आत्माएं उसे पहचान सकती है, दूसरे नहीं पहचान सकते, क्योंकि द्वापर कलयुग में ऐसा नहीं है कि परमात्मा का साक्षात्कार होता नहीं। द्वापर कलयुग में भी जो अच्छे अच्छे भक्त होते हैं उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार होता रहता है। तो शूटिंग पीरियड में भी जो अच्छे अच्छे भक्त आत्माएं हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, भक्ति के जिनके संसार है तत्व प्रधान भक्ति के, वो द्वापर कलयुग की शूटिंग में भी परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार बुद्धि योग से करते रहते। तो ये ज्ञान तो तुम ही समझते हो, बाकी वो सब भक्ति करते पतित बनते रहते, इसकी भक्ति की जाती है। याद तो किया जाता है, आत्मा और परमात्मा को, और भक्ति किसकी की जाती है? साकार की भक्ति की जाती है, पितरों की भक्ति की जाती है, तो वो क्या करते रहते हैं? ज्ञान मार्ग में चित्रों की पूजा या चित्रों का दर्शन दर्शनार्थ जाते हैं ना, महिमार्थ जाते हैं ना, जड़ चित्रों को देखने के लिए, जड़ चित्रों के मंदिरों में, जड़ तीर्थों में, वहाँ होता क्या है? चैतन्य देवता बैठा होता है क्या? नहीं, जड़ चित्र रखा होता है। तो वो सब भक्ति करते करते पतित बन गए थे, जड़ चित्रों की भक्ति करने से और ही पतित होते जाते हैं। पावन दुनिया तो पहले थी, तो तुमको बाप बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं आप जानी जाननहार हो। बाप कहते हैं मैं कोई एक एक के दिल को बैठ थोड़े ही जाऊंगा, सुप्रीम सोल को एक एक के दिल को बैठ जानने की क्या दरकार? सुप्रीम सोल बाप तो आकर के जो मुख्य मुख्य एक्टर्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो क्या वो छोटे छोटे गांवों के अंदर जो चौकीदार काम कर रहे हैं या सिपाही काम कर रहे हैं उनको डील करेगा? उनसे कनेक्शन रखेगा? उनसे का कनेक्शन उनसे के साथ होगा ना, सबके साथ डायरेक्ट थोड़े ही हो जाएगा। तो सुप्रीम सोल बाप उनकी वाणी में कहती है गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा देवताओं में बड़ा संकट है, ये महावाक्य है। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? भारतीय परंपरा है, बड़े लंबे समय तक यहाँ राजाई द्वापर और कलयुग में बड़े बड़े राजाएं होते रहे, राजाई चलती रही। त्रिमूर्ति ब्रह्मा देवताओं में बड़ा संकट, इससे पहले का वाक्य है गॉड इज वन, गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा देवताओं में बड़ा संकट, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? संकट हुआ ना, तभी तो उनके सबक के अंदर बैठा हुआ दिखाया गया है। तीन लोग के चित्र वो तीन सूक्ष्म वतन में, तो भारतीय परंपरा में राजाओं ने राजाई जो दी है वो सदा बड़े बच्चे को दी है। क्यों? बड़े बच्चे को इतना महत्व क्यों दिया जाता रहा? इसका कारण क्या है? बड़े बच्चों को ही राजाई क्यों दी गई? भारतीय परंपरा में राजाओं ने जो राजाई दी है वो मोस्टली बड़े बच्चों को दी है। बाप के बाद बड़ा बड़ा भाई जो है वो बाप समान कहा जाता है। तो बाप समान क्यों कहा जाता है? नहीं, जो बड़ा बच्चा पैदा होता है वो लंबे समय की थ्योरी की धारण करने के बाद पैदा होता है। बड़ा बच्चा जो पैदा होता है वो लंबे समय की थ्योरी की धारण करने के बाद पैदा होता है। कैसे? उसके बाद तो पति भी होना है उसे, फिर जो दूसरा बच्चा होगा वो पति को पने से पैदा होगा। पहले लॉजिक में समझ लीजिए, स्कूल में स्कूल दुनिया में जो पहला बड़ा बच्चा पैदा होता है वो लंबे समय तक किशोरावस्था से भी आगे बढ़ गए, नौजवान बने, तो नौजवान होने तक के 18-20-25 साल के जब तक हुए, शादी हुई तब तक तो पवित्र रहे ना, इसी पुरुष तो इतने लंबी समय की पवित्रता धारण करने के बाद बड़े बच्चे का जन्म हुआ, तो वो प्योरिटी की पावर उस बच्चे में भरी हुई होती है। इसलिए बड़े बच्चे को हमेशा राजाई दी जाती है। ये परंपरा कहाँ से चली? परंपरा कहाँ से चली? कितने गुरु जी संग्रम योग से परम पिता परमात्मा ने ही आकर के शेष परंपरा का बीज रोपण किया। तो बाप भी जब आते हैं तो जो बड़ा बच्चा है यहाँ तो ज्ञान में जो बड़ा तो बड़ा है तो बड़े बच्चे को राजा ही देते हैं। बुद्ध की बात आई बड़े बच्चे को देते हैं। तो एक बाप है सुप्रीम सोल तो उसका बच्चा भी एक ही होगा जो सारे विश्व का मालिक बनने वाला सारे ही तो नहीं विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाकी तो उसके माता है तो बन सकते हैं असिस्टेंट तो हो सकते हैं। तो तुमको बाप बैठ समझाते हैं कि मैं कोई एक एक के दिन को जानने वाला नहीं। मैंने 500 करोड़ के दिल को जानने की दरकार उस बाप को नहीं है। किसके दिल को जानने की दरकार है? अरे फिर किसके दिल को जानने की दरकार है? दिल वाला बाप है शुद्ध दिल वाले बच्चे हैं दोनों के दिलियों को जानता है दोनों की बायोग्राफी बताता है जो अक्षरतन है जो इतने प्यारे लगते हैं जो बाप के सर पर चढ़ी चढ़ी हुई वो माला दिखाई जाती है। शंकर के मस्तक पर भी एक माला दिखाते हैं रौनक है? तो बाप कहते हैं मैं कोई एक एक की बिल्लियों को बैठ नहीं जानता हूँ। कोई कहते हैं बाबा आप तो सब कुछ जानते हो हम विकार में जाते हैं आप तो जानते हो। बाप कहते हैं मैं सारा दिन बैठ ये धंधा करूंगा क्या? मैं तो आया ही हुआ हूँ इसलिए मैं इसलिए आया हुआ हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए आया हुआ हूँ। मैं कोई ये धंधा बैठ करके देखूं एक एक को ये धंधा मेरा नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं बाकी सब वापस मुक्ति धाम चले जाएंगे सुख का वर्षा हमको मिलेगा इसी जन्म में इसी शरीर से ईश्वरीय जन्म से अधिकार हमको मिलेगा और बाकी सब कहां बैठे मिल जाते बाकी सब इस दुनिया से मुक्त करके मुक्त होकर के परम धाम मुक्ति धाम में बैठेंगे हम सुख धाम में बैठेंगे कैसे जाएंगे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? इसने प्रश्न किया कि मुक्ति धाम में कैसे जाएंगे या हम सुख धाम में कैसे जाएंगे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? बाप या करके मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं हिसाब किताब चुप करके सब कुछ जाना है तुमको सबको प्रधान बनना है तो तुम दूसरों की बात नहीं क्यों जाते तुम खुद तो स्वर्ग का वर्षा ले लो दूसरे मुक्ति में कैसे जाएंगे उस बात को छोड़ है सर्थी? अरे मानी साफी अरे जिसको रथ होगा वो स्वार्थी तो जरूर होगा क्या? एक शिव बाप को रथ नहीं है अपना तो शिव ज्योति बिंदु स्वार्थी नहीं होगा। बाकी जिनको जिनको अपना शरीर रूपी रथ है वो स्वार्थी कैसे नहीं होंगे? निष्काम सेवाधारी कौन है? एक शिव ज्योति बिंदु शिव परमात्मा बाकी ए टू जेड मानव प्रजा पिता से लेकर के 500 करोड़ भी आत्मा तक मनुष्य आत्मा तक एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो स्वार्थी न हो निष्कामी हो ये हो ही नहीं सकता। कौन सी ऐसी आत्मा है जो पहले अपना कल्याण नहीं चाहती? पति को पहले अपने से प्यार है फिर बाप या पति से प्यार होता है। پھر تم دوسروں کی بات نہیں کہہ جاتے. سامو پردھان سے سٹو پردھان بنانے والا ایک ہی بات ہے. بکتی مارگ میں جان کی تو رکھتی نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں جان اور بھکتی, پوچھو جان کتنا سمے اور بھکتی کتنا سمے سکتی ہے. تو یہ وکاروں کو کچھ بھی پتا نہیں. بھکتی میں جان کی رکھتی نہیں ہوتی اور جان میں بھکتی کا انت ماتر نہیں ہوتا. تو پوچھو یہ جان کتنا سمے چلتا ہے, کتنا سمے چلتا ہے جان, کوئی بتائے گا؟ چلو وہ تو نہیں بتا سکتے. ہم برہما باپ کے بچے براہمن بنے, ہم تو بتا سکتے ہیں کہ جان کتنے سمے چلتا ہے اور بکتی کتنا سمے چلتی ہے. ہاں بکتی چلتی ہے جا پر کلی میں آج کا سنگر مگر میں شوٹنگ پیریڈ میں, شوٹنگ پیریڈ میں بھکتی کب چلتی ہے, کب تک چلتی ہے اور جان کب تک چلتا ہے. ارے سیٹنگ کے چتر میں بھول گئے کیا؟ جب تک جان سوریہ باپ ساکار میں چمکتا ہے, دکھائی دیتا ہے, پرتک ہوتا ہے, تب تک ہے جان. اور جب گپت ہو جاتا ہے تو ہو جاتی ہے بکتی. تو وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے. بکتی الگ چیز ہے. باپ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ میں کیسے آتا ہوں اور کس میں پرویش کرتا ہوں. کیسے آتا ہوں تاکہ پن میں پرویش کر کے آتا ہوں اور کس میں پرویش کرتا ہوں. پتی تو دوسا پہ پھر ان پتوں میں سے ساری دنیا پتہ ہے تو کس میں پرویش کرتا ہوں. کس میں پرویش کرتا ہوں اس بات کو منشیہ بھکتی مارگ میں پھنسے ہوئے ہونے کے کارن نہیں پہچانتے. بھکتی مارگ میں ایسی کون سی بات ہوتی ہے؟ بھکتی مارگ میں جو پوتر رہنے والے گرو لوگ ہیں انہوں کو بھگوان سدگرو سمجھ کر کے پوجتے رہتے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ بھگوان اس روپ میں کیسے آ سکتا ہے. ہم تو گروؤں کو بھگوان سمجھ بیٹھے تھے. جو گرو گرگاہ چھوڑ کر کے پوتر جیون بتاتے ہیں تو بھکتی مارگ میں پھنسے ہوئے ہونے کے کارن میرے کو نہیں پہچانتے. اس لیے تم شیو شنکر کے چتر پر سمجھاتے ہو. اس لیے سمجھاتے ہو تاکہ بھکتی مارگ میں جو پھنسے ہوئے ہیں وہ ان دیہداری دھرم گروؤں کے چنگل سے چھوٹ جائے اور باپ کو پہچان لے. لیکن چھوٹیں گے کیسے؟ اس کے لیے یکتی کیا بتائی؟ کسی میں شنکر کے چتر پر ان کو سمجھاؤ. شیو الگ ہے اور شنکر شنکر الگ ہے. اب الگ الگ تو ہے لیکن پرویش کر کے تو ایک ہی ہو گیا. دونوں کریکٹ ہیں تو کیسے کریکٹ ہو جائیں گے؟ تم شیو شنکر کے چتر پر سمجھاتے ہو. کیا سمجھاتے ہو؟ کہ شیو الگ ہے. ہر آتما کا پارٹ تو الگ الگ ہوتا ہے نا. ایسے تھوڑے کہ شیو کی آتما بھی وہی پارٹ بجائے گی اور شنکر کی آتما بھی وہی پارٹ بجائے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا. شیو کا پارٹ الگ اور شنکر کا الگ. وہ تو دونوں کو ایک کر دیتے ہیں. کون ہے؟ بھکت مار والے. تو بھکت مار والے وہ سمجھ لیتے ہیں باہر کی دنیا نہیں. ہمارے براہمنوں کی دنیا میں آدھار موت براہمنوں میں بیج روپ براہمنوں میں شیو اور شنکر کو ملا کے ایک سمجھ لیتے ہیں. بہتوں کو تو شنکر ہی شنکر دکھائی پڑتا ہے. شیو بندو تو بھول ہی جاتا ہے. یا تو ساکار سے چپک جاتے ہیں یا پھر بندو سے ہی چپکنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو پرویش کیا ہے اس لیے شیو شنکر ایک کہہ دیتے ہیں بھکتی مارگ میں. लेकिन वास्तव में कोई एक थोड़े ही है, आत्माएं तो दोनों अलग अलग है ना, तो उनका एक्ट भी अलग अलग होगा। जो पतितन है, पतितन धारी आत्मा, वो अपना एक्ट करेगी, और जो एवर प्योर उसमें प्रवेश, वो अपना एक्ट करेगा। तो राम रावण का युद्ध कहाँ हुआ? मूल रूप में है? जो तन है, जिस तन में मुकर्र रथ में परमात्मा प्रवेश करते हैं, मूल युद्ध की शुरुआत वहां से हो गई। उस युद्ध में जब वो स्वयं विजयी हो जाए, कौन? संतर की आत्मा, तो समझो कि काम विकार के ऊपर जीत पाई, मानो कामदेव को भस्म किया। तो अपने अंदर के बैठे हुए कामदेव को भस्म करने वाला, उस काम विकार रूपी चोर डकैत को पकड़ने वाला, कंट्रोल में करने वाला, फिर दूसरे शत्रुओं को भी आसानी से भगाएगा, और अपने ही नहीं भगाएगा, दूसरों के भी भगाने में सहयोग देने वाला बन सकेगा। तो तुम शिव शंकर के चित्त पर समझाते हो, वो तो दोनों को एक कर देते। हम बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी ऐसे ऐसे हैं जो, हाँ, बीज रूप आत्मा एडवांस पार्टी के अंदर जो बीज रूप आत्मा इकट्ठी हो रही है, वो भी ऐसी हैं कि शिव और शंकर को मिला करके एक समझ लेती है। जब एक समझ लेती है, तो चाहे शंकर को याद करो, चाहे शिव को याद करो, अंतर तो कोई पड़ने वाला है नहीं, लेकिन अंतर जरूर पड़ेगा। अगर सिर्फ शंकर के चोले को याद किया और शिव जी को ज्योति बिंदु भूल गए, तो क्या होगा रिजल्ट? शंकर के संस्कार आ जाएंगे, और संस्कार, शंकर के संस्कार अगर जित पीने के आ गए, जो अगस्त वाणी में बाबा ने बोला, शंकर का पार्ट अलग, 500 करोड़ आत्माओं से जुदा अलग पार्ट, शंकर का पार्ट वंडरफुल है, जो तुम बच्चे भी समझ न सको। तुम बच्चों को मास्टर शंकर नहीं बनना है, है? हाँ, मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, तो तुम भी पतितों को पावन बनाने लग जाओ। अरे उसमें तो परमात्मा की प्रवेश है, सुप्रीम सोल प्रवेश है, उसकी गारंटी है, उस रथवान के प्रति, उस रथ के प्रति, कि अगर कोई गलत एक्ट भी करेगा तो मैं जिम्मेवार हूँ। मैं माने कौन? शिव बाप। तुम क्या करो? तुम सिर्फ मेरे डायरेक्शन पर चलो। कोई समझ लेते हैं शंकर का डायरेक्शन? शंकर का डायरेक्शन तो होता ही नहीं, शिव का डायरेक्शन समझो। अगर सदैव शिव बाबा बुद्धि में रहेगा तो कल्याण ही कल्याण, और जिनकी बुद्धि में सिर्फ देहधारी, देह को धारण करने वाली आत्मा और उसका शरीर देह, वही बुद्धि में रहा तो कल्याण हो तो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे को याद करेंगे अंत में हम वैसे ही बनेंगे, लेकिन बीच में तकलीफें बहुत आएंगी, परीक्षाएं जबरदस्त आएंगी, क्योंकि उस आत्मा में तो योग की पावर है। उस योग की पावर से सशक्तशाली, शक्तिशाली आत्मा होने के कारण वो न करने योग्य कार्य भी करके और उसे जीवित रह सकती है। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जन समिति नहीं। जैसे सूर्य गंदे से गंदा सामान, सड़ा हुआ सामान सूर्य के सामने डाल दो, वो सुखा देगा, गंद को खा जाएगा, बीमार नहीं पड़ेगा। वो तो जड़ सूर्य की बात हो गई। चैतन्य सूर्य की भी यही बात है। चैतन्य सूर्य के सामने कोई भी कचरा डाला जाए, कीचड़ डाला जाए, उसके ऊपर कोई असर पड़ नहीं सकता। चंद्रमा के ऊपर धब्बा लग सकता है, चंद्रमा में धब्बा है भी, लेकिन सूर्य में धब्बा नहीं लग सकता। अग्नि है, अग्नि में कैसा भी कचरा डाल दो, क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी अग्नि है? कौन सा अग्नि देवता है? है? योग अग्नि का देवता, योगीश्वर।
तो जिसका योग पूरा पूरा लगा हुआ है वो तो कोई भी कर्म करे, जैसे बाबा मुरली में बैठे कुछ भी करो, भले कोई कर्म करो, लेकिन क्या करो, लेकिन क्या करो, मेरी याद में। अब यही तो मुश्किल है। कोई कोई कर्म ऐसे हैं जिनमें 63 जन्मों का ऐसा लगाव लगा हुआ है कि रसगुल्ला जब खाने लगते हैं तो और सब कुछ भूल ही जाते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जिन्हों जिन्होंने वो बिंदु को याद करने की प्रैक्टिस कर ली, बुद्धि को सूक्ष्म बना लिया, वो आत्मा मन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में टिक जाती है। और टिकने के कारण वो कोई भी जो कर्म करती है उस कर्म करते हुए भी उनकी मन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज बनी रहती है और उनके ऊपर वो लेप-छेप नहीं लगता। जैसे अक्सर हमने देखा होगा कि हम किसी गहरे ध्यान में हैं, गहरे मंथन में हैं, आंखें हमारी खुली हुई है, कोई सामने से निकल जाता है और हमको पता नहीं पड़ता। क्यों? आंखें खुली हुई है, आंखों ने देखा नहीं क्या? हाँ, आंख स्थूल आंख है, ये इंद्रिया भी स्थूल है। स्थूल इंद्रिया कोई भी भोग नहीं भोग सकती और उनका कोई भी पाप पुण्य नहीं बन सकता यदि मन बुद्धि दूसरी जगह लगी हुई। तो मन बुद्धि से अगर हम ज्योति बिंदु बाप जो शक्ति पर पाठ बजाय रहा है प्रैक्टिकल में, उसकी याद में उसके लव में लीन है, तो हमारे ऊपर कोई पाप लग नहीं सकता किसी भी कर्म का। क्योंकि बाप हमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाने आया हुआ है। अकर्म कैसे बनता है ये गति बाप ने हमको समझाई है। अकर्म कैसे बनेगा? कर्म करें लेकिन उसका अकर्म बन जाए। बाप की याद में रहकर जो कर्म किए जाते हैं
शंकर की जो आत्मा है वो क्यों विकर्म करना,
क्यों विकर्म करना,
हर भाषण क्यों करवा रहे हैं? कि ज्ञान मिलने के बाद ना
वो विकर्म करता ही नहीं। बाबा ने तो कहा शंकर कोई शंकर तो पाप करता ही नहीं, ना वो पाप करता है ना वो पुण्य करता है, वो तो दोनों से जीरो है। आप कहते हैं शंकर पाप करता है?
पाप नहीं
करता। विकर्म माने पाप, विपरीत कर्म, जी माने विपरीत, और कर्म माने कर्म, विपरीत कर्म।
आप
क्या बताते हैं, क्या बताते हैं? विष पीने के बारे में बताया। हाँ तो विष पाई है लेकिन विष कहाँ तक गया? तो जब
पेट में क्यों कंटिन्यू लगना?
ये इतनी बड़ी दुनिया, कहते हैं सागर मंथन हुआ और उसमें से विष निकला ढेर का ढेर, वो विष तो सारी दुनिया को खलास कर देगा। तो इसलिए जो एक समर्थ है वो ही उस सारे विष को पी ले, तो उस विनाश की लीला से तो बच जाएंगे, नष्ट होने से तो बच जाएंगे। तो एक को निमित्त बनाया जाता है विष पीने के लिए, वो सारा विष पी जाता है, बाकी सब पवित्र हो जाते। भाई बहन बना कि नहीं? दुनिया में तो रावण राज है, राम राज नहीं है जी। पी जाता है, है? लेकिन शक्ति भी तो चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा की तरह सर के ऊपर बटन महसूस हो और आठ खेल हो जाए, उतनी शक्ति भी तो चाहिए। शक्ति कौन सी है? लव में लीन होना। ऐसे लव में लीन होना कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या की कोई परवाह नहीं। बाप के बने हैं तो इतना सरल निश्चय हो कि हमारा तो कल्याण हुआ पड़ा है,
बेफिक्र बात
है, बेफिक्र बात है। और होता भी नहीं तो ऐसे होता है कि जो आत्मा एक बार विकार में जाएगी, कर्मेंद्रियों की विकृति में जाएगी, तो ज्ञान बुद्धि में टिक नहीं सकता। क्यों? चिंता खा जाती
है।
7 साल तक रहता है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने मुरली। तो जो असर रहता है वो सब असर रहेगा जब बुद्धि में याद नहीं होगी। बांदेली माता भी कर क्या करें? बांदेली माताएं बहुत ही ज्ञान में चल रही हैं। इतने पुरुष नहीं चल रहे हैं, कुमार नहीं चल रहे हैं, कुमारियां नहीं चल रही, बांदेली माताएं बहुत हैं। तो उनका तो पुरुषार्थ चौपट होगी है? क्यों? उनके हिसाब से उनका पुरुषार्थ क्या हुआ? हो गया सत्यानाश। लेकिन नहीं, उनकी जो अपनी जगह है, अपना लगाव है, वो नहीं होता। इसलिए बाबा ने बोला हुआ है कि बांदेली माताएं अगर उनका पति नहीं छोड़ता है, पतित बनाता है, बांध करके पतित बनाता है, तो तुम्हारा कोई चीज तो शंकर का पाठ अपना, उसकी तुम चिंता मत करो। तुम मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ मत करो। वो तो पाठ जिसका है उसका है, उसी का रहने दो। राम तो रावण बनता है, रावण तो राम बन जाता है, कृष्ण तो कंस बनता है, कंस तो कृष्ण बनता है। तो आप जब पहचान लिया, जान लिया, तो जानने के बाद मानना भी तो चाहिए ना। फिर बार बार बुद्धि चलावन क्यों हो रही है? तो वो सूक्ष्म रतन वासी, वो परम धाम के वासी कौन? वो बाबा परम धाम के वासी और शंकर सूक्ष्म रतन वासी फरिश्ता, जिसका फर्श की दुनिया वालों से कोई मन बुद्धि से रिश्ता नहीं। क्या शरीर की कर्मेंद्रियों से रिश्ता नहीं होता क्या? प्रैक्टिकल में रिश्ता नहीं होता क्या? होता है, लेकिन बुद्धि से परे। अगर बुद्धि से परे है तो वो रिश्ता मन का बुद्धि का जुटाएगी, और जब वो रिश्ता नहीं जुटा तो याद भी नहीं आएगा। तो वो सूक्ष्म बतन वासी, वो परम धाम वासी, दोनों के स्थान भी अलग अलग है। फिर उनको एक नाम कैसे रख सकते? सेवशंकर नाम रख दिया मिला करके। वो निराकारी वो आकारी, ऐसे थोड़े ही कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है। क्या ये वाणी लेकर के बहुत डिस्टर्बिंग हुई है? क्या कहा? ऐसे थोड़े ही कहेंगे शिव में शंकर में शिव का प्रवेश है। ये वाणी किस समय की बोली हुई है? जिस समय ब्रह्मा का पाठ चल रहा था, ब्राह्मण धर्म की स्थापना का, उस समय ये वाणी बोली गई। उस समय की बोली हुई वाणी को समय का ध्यान न दे करके, व्यक्ति का ध्यान न दे करके, वातावरण का ध्यान न दे करके उसका ऐसे ही अर्थ उठा लेना तो अर्थ हो जाएगा। वाणी जो उस समय चली हुई है तो उस समय की लिए बात है कि क्या उस समय शंकर पाठधारी था? भाई वही बाबा ने मुरली बोला हुआ, ऐसे थोड़े ही कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है। माने ब्रह्मा के तन में शिव का प्रवेश था उस समय जब ये वाणी बोली गई है। शंकर में थोड़े ही, जो तुम शिव शंकर एक कह देते हो, क्या शिव का प्रवेश उस समय शंकर में था ही नहीं? तो शिव शंकर एक कैसे हो गया? प्रवेश कब हो? जब शंकर हो। तीन मूर्तियां है ना, मूर्त माने साकार, मूर्ति है ना तो मूर्ति माना साकार, और अमूर्त माना मिट्टी मूर्ति का हो। तो तीन मूर्तियां है ना, तो तीन मूर्ति में पहला पार्ट किस पर चलता है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना का पार्ट पहले चलता है। फिर क्या समझाना चाहिए? शंकर द्वारा दूसरी मूर्ति, सेकेंडरी मूर्ति, शंकर द्वारा विनाश, जिसकी घोषणा बाबा ने मुरलियों में और चित्रों में करा दी। क्या घोषणा कर रही? आने वाले 10 वर्षों में भारत के भ्रष्टाचार अधिकारों का अंत होने वाला है, उसके ठीक पश्चात इस दुनिया का विनाश होने वाला है। तो विनाश के लिए तो जरूर कोई निमित्त होना चाहिए, निमित्त माना ही साकार, तो वो सेकेंडरी मूर्ति। तो मूर्ति स्थिति में ऐसे कभी नहीं समझाना चाहिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये रंग है, इस तरह कार्य होता ही नहीं। तो जिस समय ब्रह्मा की थ्रू वाणी चल रही है, उस समय बाबा ने ये बात बोली कि ऐसे थोड़े ही कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है, यानी उस समय शिव का शंकर में प्रवेश है नहीं, वो मूर्ति ही नहीं थी। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना जब संपन्न हो जाए तब शंकर का कार्य शुरू हो। कब से? कौन से वर्ष से? 76 से। गुरु बाबा ने पहले से ही घोषणा करा दी थी कि 10 वर्ष के बाद विनाश वाला विनाश होगा। तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि शंकर में शिव का प्रवेश है, जो तुम शिव शंकर कह देते हो। शिव शंकर कब कह दो? जब प्रवेश हो तब तुम शिव शंकर कह दो, तुम तो पहले से ही कहना शुरू कर दिए। बात समझाते हैं, मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। क्या? हाँ, शंकर में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। हाँ,
शंकर आ जाएंगे।
नहीं, ब्रह्मा से आउट नहीं हो जाएंगे। ब्रह्मा तो जरूर चाहिए शिव बाबा को, शंकर नहीं चाहिए। तो बाबा को चाहिए तो ब्रह्मा चाहिए, क्योंकि मुरली बोला ये ब्रह्मा चला जाएगा तो क्या यज्ञ का कार्य नहीं होगा? भले ये ब्रह्मा चला जावे तो जिस तरह में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, ये मुरली बोला हुआ है। तो ब्रह्मा भले शरीर छोड़ देते हैं, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मण बच्चे तो है, तो जो जिस ब्राह्मण बच्चे के मस्तक में वो ज्ञान चंद्रमा प्रवेश होकर के कार्य करता है, उसी में शिव बाबा भी प्रवेश हो जाते हैं। तो शिव बाबा का प्रवेश तो ब्रह्मा में ही होना है, शंकर में शिव बाबा का प्रवेश नहीं। शंकर की आत्मा से कनेक्शन नहीं है, शिव बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन किससे? ब्रह्मा की टोली। अरे पढ़ेगा कौन? पढ़ाई कौन पढ़ेगा? पतित पढ़ाई पढ़ेगा या पावन पढ़ाई पढ़ेगा? पतित ब्रह्मा की सोल है या शंकर? अरे शंकर सूक्ष्म बतनवासी फरिश्ता, जिसका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता ही नहीं, न सोमो आए स्मृति लब्बा। तुम कितना भी उससे चूमो चाटो और कितना भी उससे प्यार करो, वो एक सेकंड में जुदा अलग न्यारा, तो न्यारा तो ग्यारह बन जाता है। तो ये पार्ट है क्या? शंकर का ये विशेष पार्ट है, इसलिए बाबा ने मुझे बोला हुआ है शंकर का जो पार्ट है वो इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। तो बात समझाते हैं, मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, पढ़ाई कौन पढ़ता है? ब्रह्मा की सोच। कृष्ण की सोच पढ़ाई पढ़ने वाली है, शंकर के लिए पढ़ाई नहीं है, वो पति तो बनता ही नहीं। मुरली में भी बोला हुआ है शंकर कोई पति तो बनता है क्या? नहीं, शंकर तो पति तो बनता ही नहीं। पति तो कौन बनते हैं? जिनकी मन बुद्धि चरित होती है, पति तो होती है, नीचे तेज मिल जाती है, उसको पति तो कहेंगे। सन्यासी लोग हैं, घरगार छोड़ देते हैं, शरीर से पवित्र रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि फिर नहीं भागती रहती है तो पतित हुई है पावन हुए फिर पतित हुई। यहाँ तो बाप जो हमें सिखाते हैं वो बात ही निराली सिखाते हैं। तो तुमको ये किसने बताया कि शिवशंकर एक है? है किसने बताया कि शिवशंकर एक है जब नाम दो है शिव और शंकर। शिव माने कल्याणकारी, शंकरो के संहार कर देता है वो शंकर, तो कहाँ कल्याणकारी और कहाँ आग लगाना, दोनों को मिला के कैसे कर दिया। शंकर को तो कभी कोई गॉड फादर नहीं कहते, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताएं कहे जाते हैं, उनको कोई परमात्मा नहीं कहा जाता। देवता अलग और परमपिता परमात्मा का पाठ अलग, उनको तो गले में सांप डाल करके सकल ही देखो कैसी बनाई थी, गले में कौन पड़ गए, ऐसे ही गले पड़ गए। एक कहावत है क्या बताए भाई, ये घरवाली तो हमारे गले पड़ गई, तो गले पड़ जाना मन। कुछ ऐसे बिच्छू चिंदन है जिनकी बुद्धि में ये बैठ गया कि इसके बगैर मेरी सदगति हो ही नहीं सकती, तो वो तो गले पड़ गए, गले पड़े हुए। अरे तो गले पड़ गए तो उनको झटकार दो, लेकिन नहीं, चंदन विच्छेद आपत रही लिपटे रहे तो गुजर। चंदन का पेड़ होता है उसमें सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन वो विषैला नहीं बनता, उसकी लकड़ी कोई विषैली नहीं बनती, तो जितना घिसा जाएगा तो मत्थर पर लगाने से सुगंध ही देगा, वृक्ष का असर नहीं करेगा। तो ये विशेषता बताई पार्टी की, तो उनके गले में सांप डाल करके देखो कैसी कैसी बनाई दी। फिर बैल पर सवारी दिखाती, बैल पर सीधी कोई सवारी करता है क्या? बैल को पहले गाड़ी में जोड़ता जाएगा फिर गाड़ी पर बैठा जाता है, ये क्या सीधे ही बैल के ऊपर बैठ गया? बैल के ऊपर सवारी दिखाई दी, कहाँ दिखाई दिए है? भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में जो चित्र बनाते हैं उस चरित्र की यादगार है। किस चरित्र की यादगार? संगम युगी चरित्र की यादगार है कि बैल के ऊपर शंकर की सवारी दिखाते। बैल का मतलब, बैल का मतलब है अड़ियल, बैल का मतलब है जो सांड होता है ना, ये जो खेती करने वाले बैल उनसे मतलब नहीं है बाबा का, वो सांड से मतलब है जो एक सांड अनेक बच्चे पैदा करता रहता है, अनेक बच्चे पैदा करता रहता है। तो देहमानी सांडा, हाँ देहमानी सांडा, तो जिसमें ज्यादा देहमान होता है तो भिखारी भी जाती होगा, तो उस बैल पर सवारी दिखाई है। अब बाबा ने वाणियों में बैल किसको बताया, मुरलियों ने बैल किसको बताया है? बैल किसको बताया? ब्रह्मा को बैल बताया। जानवर बुद्धि को बैल कहा जाता है। परमात्मा बाप आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान की गहराई में मन चिंतन मंथन में जा करके फिर वो ऊपर ऊपर का ज्ञान उठा लिया तो जानवर बुद्धि हुआ ना? अरे अरे हुआ या नहीं हुआ भाई? जो कोई बात कहे और उस बात के गुहार्थ को न समझे और उल्टा काम कर ले और उल्टा काम करके अपने ही गले में फांदा लगा ले, फांसी लगा ले, खलास हो जाए, हाथ खेल हो जाए, तो फिर योगी की सिद्धि होगी? नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा हुआ बैल और उस बैल के ऊपर सवार होता है कौन? शंकर। और शंकर में शिव अपने टाइम पर उस मूर्ति के द्वारा कार्य करते। ये मुरली जी से चलाई है ब्रह्मा के कण से, उस समय थोड़े ही शिव शंकर एक थे, उस समय की बात नहीं थी। तो ऐसी ऐसी वाणियां आई हैं जिन वाणियों से ये क्लियर हो जाता है फिर बाबा मुरलियों ने इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि शिव शंकर एक भी होते हैं कोई टाइम पर। तुम बच्चे ऐसे ही समझो कि ये मेरा डायरेक्शन है, तो वो तो सभी समझ सकेंगे, दोनों की एक ही समझे। अगर अलग अलग समझा तो बाप की प्रवेशता का और चले जाने का तो पता ही नहीं लगता, तो अलग अलग समझे ही कैसे। तो बाबा ने डायरेक्शन दिया, तुम हमेशा ये समझो कि हमको शिव बाबा ही डायरेक्शन देते हैं, हम शिव बाबा से ही बात करते हैं, शिव बाबा से ही मिलते हैं। शंकर याद ही नहीं आना चाहिए, शंकर की बात ही बुद्धि में नहीं आनी चाहिए, शंकर की हमारा कुछ लेना देना नहीं, लेना देना किस सोलते है सुप्रीम सोल बाप से। तो बैल पर सवारी दिखाते हैं, बैल पर सवारी दिखाते हैं, और शिव के मंदिर में बैल कहाँ दिखाते हैं? बाहर। बाहर का मतलब क्या है? बाहर का मतलब क्या है? है? मंदिर के अलग नहीं, जो जलाधारी होती है उस जलाधारी से जहाँ जल बहता है, जो जलाधारी की नाली होती है उस नाली के बिल्कुल मुंह पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। है? हाँ वो ही बैल, बैल मुख, बैल गौ मुख, बात तो एक ही हो गई, बैल। तो बैल वहाँ बैठा हुआ दिखाया गया, बैल मानो बैल ब्रह्म, जिसकी बुद्धि नहीं चलती, ज्ञान जैसा शिव बाबा ने सुनाया बस वैसा ही ऊपर ऊपर समझ लिया, उसके गुहे आपको नहीं समझा, तो उस बैल के ऊपर सवारी करता है कौन? शंकर। अरे बनी होगी तो कौन चाहिए? बनी तो साकार में होती है, तो बनना भी कैसा होगा? साकार में होगा ना, तो बैल हो गई बनी, और उसका सवार होने वाला बनना होगा। तो ये गुहार है, शंकर को नहीं दिखाते हैं नाली के सामने, किसको दिखाते हैं? ब्रह्मा को, यानी बैल को। अरे इतनी बड़ी नाली नहीं है तो क्या है? शिव को कहाँ दिखाया गया? मंदिर में शिवलिंग दिखाते हैं, कहाँ दिखाया गया? उसको जगत माता कहते हैं, उसको जगत पिता कहते हैं। किसको? शिव को जगत पिता माना, और कहाँ बैठा हुआ है? जगत माता में। तो ये माता पिता का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, लेकिन वो अपवित्र स्टेज नहीं है, वो कैसी स्टेज है? पवित्र स्टेज दिखाई गई, और बैल भी बैठा हुआ दिखाया गया है। तो बैल जो जानवरियत की निशानी है, अड़ियल पने की निशानी है, ढेर सारी पैदाइश की निशानी है, क्योंकि सत्यकर्ता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा से ही शक्ति, इतनी भारी शक्ति तैयार होती है, बैल से भी ढेर बच्चे पैदा होते हैं। तो बैल पर शंकर की सवारी दिखाते हैं, लेकिन शंकर को भगवान तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या शंकर को ये गलती कभी नहीं कर देना कि शंकर भगवान है? नहीं, शंकर क्या है? देवता तो मान सकते हैं, कैसे भी हरदेव देव महादेव। हाँ शंकर को भगवान तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, शंकर का तो कोई जैसे पार्टी नहीं है, शंकर का तो कोई जैसे पाठ ही नहीं। क्यों? क्योंकि पाठ तो कर्मेंद्रियों के द्वारा बजाया जाता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा वो कोई पाठ बजाता ही नहीं, उनकी तो बुद्धि से कर्म करने में उसका कोई लगाव नहीं है, और जब लगाव नहीं है तो कर्म का कोई प्रतिफल नहीं हो सकता, अकर्म हो गया। मैं विनाश ऐसे से कराता हूँ जिसका कोई पाप न लगे। मुरली ने महावाक्य बोला कि मैं विनाश ऐसे के द्वारा कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे, तो जरूर ऐसी स्टेज बनी हुई होगी कि जिस पर कोई पाप न लगे। तो देखो शंकर का तो जैसे कोई पाठ नहीं, शिव का तो पाठ है। क्या करते हैं शिव का खास पाठ कौन सा है? ज्ञान सुनो ना, हाँ कल्याण करना तो है, लेकिन किस रूप में, कौन से कार्य करके कल्याण?